ధ్యానం
ఓం నమో వజ్రాయణ
ఓం నమో లోయే శబ్దశౌనం
ఓం నమో లోయే శబ్దశౌనం
పంచ పరమేష్టి భగవాన్ కీ बुढ़िए 1008 श्री भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की बुढ़िए 1008 परम पूज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज बुढ़िए 1008 परम पूज गुरुवर श्री नैमी सागर महाराज बुढ़िए परम पूज 1008 श्री मुनिवर क्षमा सागर महाराज की जय। जैसे जुर के जोर से भोजन की रुच जाए, जैसे जुर के जोर से भोजन की रुच जाए, तैसे कुकरम के उदय धर्म बचन न सुहाए। लगे भूख जुर के गए रुच सू लेते आहार, और अशुभ गए शुभ के जगे जाने धर्म विचार। अशुभ कर्म को उदय चलो जाए तो धर्म में लवलीन हो जाता है आदमी, और अगर उसको अशुभ कर्म को उदय आ जाए तो धर्म से विनष्ट हो जाता। ज्यों काहू बिसिदर दसो रुच सो नीम चबाए, निर्विष तन के होते ही नीम रसन ना सुहाय। निर्विष तन हो जाए फिर वो नीम को कहने करी है। धर्म सरोवर सूख गए, धर्म सरोवर सूख गए हो रहो अत्याचार, जात पात को भेद सब मिटा दो सरकार। एक सीट पर बैठना साथ साथ में करना भोजन, राती दिन का भेद नहीं जब चाहे तब चाहे खा लेना। भक्ष अभक्ष जानते ही नैया, भक्ष अभक्ष जानते ही नैया, मंदिर को में जाते ही नैया। पिक्चर और सिनेमा टीवी इसके बिना चलते है नैया। श्रावक भाई भटक गए जग में उल्टे कामों को ठाणे भय, जोन काम को न करे श्रावक आगे ठाणे हो गए। स्वाध्याय जब सुनते ही नैया, कैसे धर्म धर्म विचारे ओ गजरत पच कल्याणक विधान, और पूजा पाठ कराते हैं। पाप कमाई ज्यादा करते धर्म डूबता जाता है, पाप कर्म को छोड़ो भैया धर्म साथ में जाना है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। कहते धर्म की महिमा अपरंपार होती है, कोई कितना भी कर ले लगन आपके पास में धर्म जुड़ा है और आप धर्म से जुड़े हो तो आपके उपसर्ग कितने ही आ जावे, कितना भी आपके साथ में कोई शत्रुता करे बैर भान बजावे, वे सब आपके शांति से निकल जाएंगे। कहते हैं एक समय नारद जी अयोध्या नगरी पहुंचे और राम लक्ष्मण ने नारद जी को आते हुए देखकर और ऊंचा आसन बैठाया, खुशखबरी पूछी कि कहां से आप आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हम विदेश क्षेत्र से आ रहे, 22 वर्ष विदेश क्षेत्र में रहे और अब बेचारा कि चलो भाई अयोध्या जी चलें। तो पूछा कि सीता कहाँ है। रामचंद्र जी मौन हो रहे। कृतांतवक सेनापति ने कहा कि सीता के लिए तो श्री राम ने वनवास दे दिया है। क्यों, कौन सी बात पर वनवास दे दिया? कि जब राजा दशरथ पिताजी वैराग्यता को प्राप्त हुए और भरत को राज देने के लिए कहा तो राम जी और लक्ष्मण वनवास को चल दिया। सीता का हरण हो गया। वहां से पूरी कथा कृतांतवक सेनापति ने नारद जी के लिए सुनाई। रावण ने सीता का हरण किया और वहां से रावण को मारकर सीता को आए लेके और यहां सीता के लिए दोष लगा दिया सील में। नारद जी कहने लगे ओ ऐसी सती सीता के लिए दोष लगा दिया। हे राम जी, आपने जमनते थे कि सीता निर्दोष है, आपने सीता के लिए वन में कैसे भटका दिया? कृतांतवक से पूछते हैं कि बतला ये तो सीता को कौन से वन में छोड़ा है तुमने? कहता है मैंने सिंहनाद अटवी में छोड़ा है। अरे भाई, सिंहनाद अटवी में तो वो सीता जिंदा मिले ही नहीं। अब नारद जी ने रामचंद्र जी से और लक्ष्मण जी से कुछ नहीं कहा, बिना बोले और आकाश मार्ग से चल दिया। नदी सरोवर बन उपन ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत गए। नारद जी विचार करते हैं कि सीता अगर जिंदा है तो मैं ढूंढ के रहूंगा, ऐसी सती के लिए राम जी ने कैसे बल के लिए निकाल दिया। और जाकर पुंडलिकनी नगरी पहुंची। वहां जाकर राजा बजजंग से मिली। राजा बजजंग ने सत्कार पूर्वक बैठा रहे और कहा कि कुशल तो है नहीं आपके लिए, सब कुशलता तो है। कहा हम तो बहुत कुशल हैं, जब से सीता हमारे यहां आई है, जब से उनके पुत्र जो होशियार हुए हैं, तब से हम किसी राजाओं की किसी शत्रु की भय नहीं रही। बहुत बलाकारी, बहुत धर्म, बहुत पुण्यात्मा जीव हैं। अरे तो सीता कहाँ है? राजा बजरंग नारद जी के साथ जाते हैं सीता के पास और सीता को देखकर नारद जी सीता बैठाती हैं। बैठते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं इतने में और दोनों कुमार लवण और अंकुश आ जाते हैं। सीता जी इशारों करती हैं, इशारे से दोनों समझ जाते हैं नारद जी के चरण स्पर्श करके और बैठ जाते हैं। नारद जी कहते हैं तुम भी राम लक्ष्मण जैसे पुरुषार्थ में और बल में, पौरुष में और धन धान से सब प्रकार से उन्हीं के समान हो। दोनों पुत्र ने नारद जी का आशीर्वाद सुनकर पूछा, राम लक्ष्मण कौन है? नारद जी ने कहा, राम लक्ष्मण तुम्हारे पिता हैं, वे नारायण बलभद्र हैं। अरे हमारे माता, हमारे पिता हैं राम जी, और हमारी माता यहां कैसे? ये क्या हाल है? तो नारद जी ने सीता जी के वनवास से लेकर लंका का युद्ध से लेकर पूरा वृत्तांत और दोनों पुत्रों के लिए सुनाया। दोनों पुत्र जब सुनते हैं कि माता के लिए लोकापवाद के कारण और मेरे पिताजी ने वन में छुड़वा दिया, तब तो दोनों भाइयों का क्रोध का पारा वार न रहा। कहने लगे, ऐसे कैसे दे पिता, जिनकी जय जयकार संसार में हो रही और राजा बज्रजंग भी अपनी बहन बना के लाए, 8 दिन तक मैं दे रख रहा हूं, ऐसी बहन की पूजा करते हैं और ऐसी मेरी माता के लिए वन में छोड़ दिया। उनने यही नहीं सोचा कि इसके लिए कोई सिंह व्याघ्र भक्षण करेगा, और मेरी माता के लिए भक्षण सिंह व्याघ्र करता तो हम दोनों की ही जान जाती। पिता ने हमारे ऊपर भी दया नहीं की, अब तो हम उनसे बिना युद्ध करें नहीं मानेंगे, अपनी माता का बदला लेकर मानेंगे। और दोनों भाइयों ने सेनापति बुलाकर सेना की तैयारी करवा दी। सीता ने बहुत रोका, कहे पुत्रों, वे तुम्हारे पूज्य हैं, तुम उनसे क्यों युद्ध करने की ठानते हो? कहते, नहीं माता, हम नहीं मानेंगे। माता के लिए उनने इतने दुख में क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है, पिता से माता का बड़ा मान होता है, पिता से माता की ज्यादा महिमा है। क्यों है? माता ने अपने शिशु के लिए 9 माह पेट में भी रखा है और कोई प्रकार से भोजन में बाधा ना हो जाए ऐसा उसने खाया पिया है, और जन्म होने पर उसने उसके लिए सूखे में सुलाया है, आप गीले में सोई है। इस प्रकार माता की महिमा होती है। दोनों भाई संग में राजा बज्रजंग आकर के अयोध्या घेर लेते हैं और दूध भेज देते हैं कि तुम अयोध्या नगरी खाली कर दो या हमसे आकर युद्ध करो। अब ये पता नहीं कि कौन है हम। नारद जी और सिद्धार्थ इनके गुरु विमान में बैठे, सीता विमान में बैठी। सीता कह रही, हे पुत्रो, तुम मानो जे नारायण बलभद्र जिनके चक्र हाथ में बड़े बलाकारी हैं, इनसे युद्ध नहीं करो। सीता, नारद जी कहते हैं, सुनो तो सीता जी, ये तो मोक्षगामी पुरुष हैं, ये भी किसी के मारे नहीं मर सकते हैं। और युद्ध होने लगता है, कई बेर लक्ष्मण का भी रथ तोड़ देते हैं, कई बेर रामचंद्र जी का भी रथ तोड़ देते हैं, कहीं घोड़ा छोड़ कर भगा देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। ये दोनों भाई तो अपने पिता और चाचा समझ कर बाण बरका बरका मारते थे, और रामचंद्र लक्ष्मण तो बाण ऐसे छोड़ते थे कि जे हमारे शत्रु ही। बहुत बार युद्ध होते होते जब लक्ष्मण ने चक्र उठाया और जब चक्र फेंक दिया तो चक्र ने तीन परिक्रमा लगाकर और लक्ष्मण की हाथ में आ, तब लक्ष्मण कहते हैं रामचंद्र जी से कि नारायण बलभद्र अपन नहीं है, अपन भूले हैं नारायण बलभद्र जी। धोखा हो गया, जिस प्रकार रावण से चक्र वापस में आया था क्या है, फिर चक्र उठाते हैं फिर फेंकते हैं। तब नारद जी आते हैं और कहते हैं कि सुनो तो तुम युद्ध कर कौन से रहे हो, ये तो सीता के पुत्र हैं, कैसा लगा होगा। दोनों भाई रथ से उतर के दौड़ते हैं, यहाँ पुत्र दौड़ते हैं, कैसा मिला फुगा होगा। देखिए जिनको गर्भ में भगा दिया था, जो आज इतने पुरुषार्थ हो गए, इतने बलवान हो गए और इतने पर भी सीता सामने आती हैं रामचंद्र जी के, तो रामचंद्र जी फिर भी सीता से कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे लिए अभी भी ध्यान नहीं है, तुम हमारी नजर के सामने फिर आ गई। सीता कहती तो आप जो भी आदेश करें हमको मंजूर है, जो भी मंजूर है, जो आप कहें, जिस प्रकार आप परीक्षा कर सकते हो करें। तो रामचंद्र जी ने कह दिया कि अग्नि परीक्षा होगी। देखिए कथा पढ़ने में तो दो पहल में इतनी सी बात मिलती है, मैंने तनक में कह दी कि सीता की अग्नि परीक्षा होने लगी। और अग्नि परीक्षा में भी जब देवों ने देखा कि ये अग्नि की परीक्षा हो रही है, अग्नि किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन सीता सती है, आज अगर सती इस अग्नि में जल जाएगी तो कभी सत्यपने का नाम नहीं रहेगा, शील धर्म मिट जाएगा। देवों ने पृथ्वी भेद कर अंदर से जल का प्रवाह और ऊपर से जब अग्नि जलती है, 400 हाथ लंबा चौड़ा और 100 हाथ गहरा गड्ढा, जिसमें चंदन की लकड़ी अनेक सुगंधित वस्तुएं डाली गईं, जब जलने लगी तब सारी रैयत हाहाकार करने लगी। देवों के विमान ऊपर से देख रहे हैं, देव लोग देख रहे हैं, मनुष्य राजा महाराजा खड़े हैं। सीता खड़ी होकर कहती हैं कि देव शास्त्र गुरु के लिए नमस्कार करके कहती हैं, अगर मैंने सपने में भी अपने पति श्री रामचंद्र के सिवा किसी के लिए सपने में भी अगर कुदृष्टि से देखा हो, तो हे अग्नि तू हमारे लिए क्या जलाएगी, मैं तो पहले ही जल चुकी, और अगर मैंने अपने पति के सिवा दूसरे के लिए अपने भाई पिता पुत्र के समान माना है, तो हे अग्नि तुझमें क्या शक्ति मुझमें जलाने की, क्या तू जलाएगी। और सीता जी कूद जाती, सरोवर उमड़ उठता है, सारी अग्नि विध्वंस हो जाती है, कमल के फूल फूल जाते हैं और सिंहासन पर देवता लोग विराजमान करते हैं, सीता जी के लिए जय जयकार होने लगती है। ये क्या है, इस शील का सारा महत्व है, इसीलिए कहते हैं कि हे भाई हे बहनों, हमारे लिए संसार में हमने के ऐसा कुल मिला है, ऐसा हमारे लिए धर्म मिला है, हम सबसे पहले अपनी शील की रक्षा करें। किसी को भी अपने भाई बंधु पिता के समान ही माने दूसरे को, और हम अपने धर्म के लिए ना छोड़ें। ये जिभ्या है, जिभ्या के लोड़ुकता में हम अनेक प्रकार के भक्ष लेते हैं। हम जात पात को नहीं समझते, ये तो सुनो, कंठ में रखा तुमने और जहाँ कंठ के नीचे गया तो वो तो वस्तु ऐसी हो गई कि उसके लिए फैला बाहर अगर फेंको तो फिर दूसरा छुएगा नहीं, देखोगे नहीं। इतनी सी लालसा के पीछे आप लोग कहाँ कहाँ के भोजन करने लगे, उनको तो छोड़ो, अपनी क्रिया पे आ जाओ, धर्म पे लग जाओ। भगवान को स्पर्श करते हो, अपसे करते हो, पूजा करते हो, ऐसे खोटे कर्मों को छोड़ दो। आप लोग श्रावक हो, और नहीं तो आपको नहीं करना तो मैं क्या कर सकता। बोलिए भगवान महावीर।
पंडित दौलत राम जी रचित छह डाला पुस्तक परम पूज्य मुनि श्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से एसएल जैन साहब भोपाल वालों के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद की गई है, सार सहित, जिसकी लागत 40 रुपए है। जो भी महानुभाव लेना चाहें, पांडाल के बाहर स्टॉल लगी हुई है, वह 25 रुपए में उपलब्ध है। सार सहित वो अंग्रेजी अनुवाद है। अब हम सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदन, कृपया वे अपने प्रवचनाशीष से हम सभी को कृतार्थ करें। जय बोले मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय।
सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी को अपनी किसी पूर्व जीवन की मेहनत से ये वर्तमान का श्रेष्ठ जीवन मिला है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम इस जीवन को बेहतर ढंग से जिएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और हमने पिछले दिनों इसी एक बात को बार बार विचार किया है कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हमारे जीवन में होने वाली मुश्किलों को हम कैसे आसान करें, असल में हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। जब तक किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें नहीं मालूम हो तो हम उस चीज़ का सदुपयोग भी नहीं करते हैं, बल्कि कई बार तो उसका मिसयूज़ भी करते हैं। और जिस तरह हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उससे दोनों ही बातें देखने में आती हैं कि कई बार ऐसा लगने लगता है कि जितनी बढ़िया चीज़ हमें हासिल हुई है हम उसको उतनी आसानी से गंवा रहे हैं, और कई कई बार तो ऐसा लगता है कि हम अपने उस जीवन का मिसयूज़ भी कर रहे हैं। हम अपनी क्षमताओं का जितना बढ़िया उपयोग होना चाहिए था वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हमें सब तरह की क्षमता मिली है, शरीर की क्षमता मिली है, वाणी की क्षमता मिली है, मन में विचार करने की भी क्षमता मिली है, पर हम लोगों के साथ मजा ये है कि हम अपने शरीर की क्षमता का, अपने वाणी की क्षमता का थोड़ा बहुत उपयोग तो करते हैं, लेकिन उससे भी हम अपने संसार के सुखों को हासिल करने में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। रही बात मन की, तो मन की क्षमताएं हमारी बहुत हैं, पर उनका भी हम जैसा उपयोग होना चाहिए था वैसा नहीं करते। अगर हम मन की क्षमताओं का उपयोग भी करते हैं तो काहे के लिए, वो भी अपने शरीर के सुख के लिए। और जितना ज्यादा हमें अब ख्याल अपने शरीर का है और अपने भोग विलास की सामग्री के अरेंज करने का है, उतना अपनी लाइफ को मैनेज करने का या कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने का नहीं है। एक व्यक्ति को साइकिल लेनी थी तो वो दुकानदार के पास गया और उससे कहा कि साइकिल मुझे लेनी है, तो उसने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया साइकिल मिलती हैं और हम गारंटी भी देते हैं, साल भर तक हमारी साइकिल में कोई टूट फूट नहीं हो सकती। उसने कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, और साइकिल ले ली, पेमेंट कर दिया। मुश्किल से 10-15 मिनट हुए थे और वो वापस लौट के आ गया, साइकिल एक तरफ टिकाई, दुकानदार को 10 बातें सुनाई और कहा कि ले लो, पैसे वापस लौटाओ नहीं चाहिए साइकिल। तो उसने कहा हुआ क्या, उसने कहा हुआ क्या, जिस बात की गारंटी दी थी वो तो 10 मिनट में ही समझ में आ गया। तो दुकानदार को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई इतनी बढ़िया साइकिल हमने दी थी और 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया। तो जाकर के देखा तो अभी तो उसके ऊपर के जो रैपर वगैरह लगे थे वो भी ज्यों के त्यों दुरुस्त थे, वो भी नहीं फटे थे, साइकिल में कोई टूट फूट नहीं थी, घंटी बाकायदा बज रही थी, ब्रेक लग रहा था, पहिए बिल्कुल दुरुस्त थे, हवा बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था। तो उसने कहा इसमें तो कहीं कोई टूट फूट नहीं हुई, मैंने तो गारंटी दी थी और बिल्कुल साइकिल दुरुस्त है। तो बोलते टूट फूट नहीं हुई, टूट फूट नहीं दिख रही तुमको, ये मेरा चश्मा टूट गया और 2 दांत टूट गए, इतनी टूट फूट के बाद भी कह रहे हैं कोई टूट फूट नहीं हुई। आप बताइएगा, आप जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं तो कहानी पढ़ने में तो मजा आती है, लेकिन जरा अपने जीवन में देखें, इस जीवन की पूरी यात्रा के लिए जो जो साधन मिले थे उनमें कितनी टूट फूट हुई है उसकी चिंता तो है, लेकिन मेरे जीवन में कितनी टूट फूट हुई है इसकी चिंता नहीं है। साइकिल दुरुस्त है, उसकी गारंटी है कि वो साल भर में तक नहीं टूटेगी, लेकिन उस पर बैठने वाले के भीतर होने वाली टूट फूट की जिम्मेदारी कौन लेगा। भैया ऐसे ही हमारे अपने जीवन के बारे में है, हम जितना विचार अपने शरीर के टूट फूट का करते हैं काश उतना ही अपने जीवन और आसपास के जीवन में मेरी जीवन यात्रा के दौरान कोई टूट फूट ना हो, अगर इस बात का ध्यान आ जावे तो जीवन को हम बहुत अच्छे से और बेहतर ढंग से अपनी जीवन की यात्रा करने के लिए सक्षम बना सकते हैं। टॉल्स्टॉय ने कुछ प्रश्न अपने जीवन से पूछे थे और हर व्यक्ति को अपने जीवन में उन प्रश्नों को पूछना चाहिए और उनके समाधान ढूंढना चाहिए। पता नहीं उन्होंने किस तरह से उन प्रश्नों के समाधान ढूंढे थे, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से समाधान ढूंढता है, पर प्रश्न तो सबके जीवन में ये उठते ही हैं या कि उठना चाहिए। उन 5-6 प्रश्न, किसके लिए जी रहे? शरीर के लिए, भौतिक सुखों के लिए, हमारा अपना क्या सोच है इसको लेकर के? हमें तो लगता है जैसे कि हम सबके लिए जी रहे हैं, हमारे नहीं होने से शायद ये सारा का सारा परिवार नहीं चल पाएगा, समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं नहीं रहूंगा तो समाज के सैकड़ों काम अटक जाएंगे। कई बार तो ऐसा लगने लगता है जैसे कि मैं नहीं रहूंगा तो शायद देश का कुछ काम अटक जाएगा, लेकिन मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे होने और नहीं होने से इस संसार में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब फिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? मैं तो ये सोच करके जी रहा हूं कि इसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं, मुझे ये काम करना है इसलिए जी रहा हूं। नहीं, बहुत गौर से सोचना पड़ेगा इस बात को। हमारा अपना चरित्र और एक हमारा जहां हम रहते हैं उस देश के प्रति हमारा जो चरित्र है, उन दोनों का निर्वाह यदि हम कर रहे हैं तब तो हम मान सकते हैं कि हम किसी के लिए जी रहे हैं। यदि हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं तो हमारे परिवार के जो दायित्व हैं क्या हम उनको ठीक ढंग से कर पा रहे हैं? यदि हम अपने समाज और देश के लिए जी रहे हैं तो फिर हम उनके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से कर पा रहे हैं? तब तो हम कह पाएंगे कि हाँ, हम किसके लिए जी रहे हैं। और यदि वास्तव में देखा जाए तो सब अपने अपने सुख दुख के लिए जीते हैं। हम अपना सुख दुख दूसरे के संदर्भ में हमेशा विचार करते हुए जीते हैं, इससे ज्यादा मैं सुखी हूं या इससे ज्यादा मैं दुखी हूं, मुझे इससे ज्यादा सुख कैसे मिले और मुझसे इससे कम दुख कैसे मिले, अगर देखें तो इसके अलावा हमारे अपने जीवन जीने का और क्या मकसद है? हमारे अपने जीवन के लिए हमने आज तक क्या किया है? और इतना ही नहीं, हमने अपने आसपास जो ये मान करके जिए हैं कि किसी और के लिए जी रहे हैं तो उसके जीवन के लिए हमने क्या किया है? बहुत मुश्किल है इस तरह से विचार करना। हम तो सुबह शाम तक पूरे जीवन भर अपनी सुख सुविधाएं जुटाने में लगे हैं, हमारे मन में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि किसके लिए जी रहे हैं। जब जब उठता है तो धीरे से समाधान कर लेते, सबके लिए तो जी रहा हूं। नहीं भैया, ये समाधान नहीं है, मैं सिर्फ अपने और दूसरे के आत्म कल्याण के लिए जी रहा हूं, मुझे जीवन ये इसलिए मिला है। मैं पशु होता तो खाने पीने और सोने का सिर्फ मेरा दायित्व था, लेकिन मैं पशु से थोड़ा ऊंचा हूं, इसलिए खाने पीने और सोने का मेरा इतना सा दायित्व नहीं है। मुझे इस बात का विचार भी करने का दायित्व है मेरा कि मैं अपने जीवन को जी रहा हूं, अगर तो किसके लिए जी रहा हूं? और उत्तर मुझे नहीं देना है, उत्तर हम सबको खुद पा लेना है। इस प्रश्न का समाधान अगर हम पा लेंगे तो इस संसार में हमारे जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा, फिर हम अत्यंत विनम्र होकर और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन जिएंगे। अभी तो हम इसके और उसके लिए जीते हैं तो एक अहंकार में जीते हैं, लेकिन जिस दिन हमें ये एहसास होगा कि हमारे इस तरह यहां नहीं होने के पहले भी संसार ज्यों का त्यों चलता था, हमारे यहां से विदा लेने के बाद भी संसार ज्यों का त्यों चलेगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं तो सिर्फ जबरदस्ती अपने को संसार का केंद्र मान करके जीता हूं और ऐसा जीता हूं जैसे कि सारा संसार मेरे से ही चल रहा हो। ठीक ऐसी ही मेरी स्थिति है जैसे कि छाया पाने के लिए बैलगाड़ी के नीचे एक छोटा सा बकरी का बच्चा खड़ा हो गया था, और जब बैलगाड़ी आगे चली तो छाया में वो भी चलने लगा। थोड़ी देर में सोचता है कि जैसे बैलगाड़ी उसी के दम पर चल रही है। ऐसे ही तो इस संसार में मैं जीता हूं, और ये मान करके कि किसके लिए जीता हूं, मैं किसी के लिए नहीं जी रहा हूं। मेरे जीवन से अगर किसी का जीवन आसान होता है तो मेरा जीना सार्थक है। बस इतना ही मुझे अपने जीवन के बारे में विचार करना है। मैं किसी के जीवन को सुख पहुंचा रहा हूं या मैं किसी के जीवन को बहुत संभाले हुए हूं, ये अहंकार यहां इस जीवन में जितना हम लोग करते हैं वो हमारे लिए धोखे में रखने वाली चीज है। अगर करना ही है तो हम इस बात का गौरव करें कि हमारे अपने जीवन से हमने, और जब तक हम रहे तब तक कितने लोगों को हमने मदद करी, कितने कम लोगों से हमें अपने जीवन जीने के लिए मदद लेनी पड़ी, तब हो सकता है शायद हम कोई समाधान इस प्रश्न का पा सकें अपने भीतर और अहंकार से मुक्त हो सकें। दूसरा प्रश्न और अपने से पूछें कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ लाइफ, मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। गुणवत्ता को ग्रहण करना मेरे जीवन का उद्देश्य है या कि सिर्फ धन पैसा वैभव और जो अम्यूजमेंट के साधन है उनको इकट्ठा कर लेना मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहुत विचार करना पड़ेगा। मेरे जीवन का उद्देश्य मैंने क्या निर्धारित किया है? मेरे अपने क्रियाकलापों से तो यही मालूम पड़ता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य, मैं भले ही लोगों से कहता हूं कि मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है, ऊंचा उठाना है, लेकिन सुबह से शाम तक तो मैं अपने शरीर की सेवा में ही लगा रहता हूं, अपने सुख सुविधा के साधन जुटाने में ही मेरी सारी सांसें व्यतीत हो जाती हैं, तब फिर मेरा मोटिव क्या है? चार पैसे कल तक नहीं थे तो सोचता था चार पैसे हो जाएंगे, वो भी हो गए, वो उद्देश्य भी पूरा हो गया। कितने उद्देश्य मैंने जीवन के बनाए हैं और उन सबको मैं यहां पूरा करता रहता हूं, लेकिन कभी मैंने अपने जीवन का ये उद्देश्य बनाया कि मुझे सिर्फ गुणवत्ता बढ़ानी है और अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाना है जितना कि परम विशुद्ध अवस्था में परमात्मा ने अपने जीवन को ऊंचा उठाया है? क्या ऐसा कभी मोटिव अपने जीवन का रहा? नहीं, अपने तो बहुत छोटे छोटे से उद्देश्य हैं और उनकी पूर्ति में ही पूरा जीवन निकल जाता है। इसी संसार के छोटे छोटे से उद्देश्य, उनको पूरा करते रहते, उसी में मानते हैं कि जीवन की सार्थकता होगी। नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति ना करें, लेकिन जीवन का एक चरम और सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य भी हमारे ध्यान में बना रहे कि मुझे अपने जीवन को इस तरह ऊंचा उठाना है कि मुझे बार बार यहां इस संसार में आना ना पड़े, मैं इस संसार से पार हो सकूं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य वही है, लेकिन जब तक मैं इस संसार में हूं तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं बेहतर ढंग से अपना जीवन जीऊं। बहुत छोटी सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक शब्द अपने घर में जाकर के हम लिख लें कि कल से बेहतर आज जीऊंगा, बस इतना ही। मेरे बेहतर की परिभाषा क्या होगी? यही कि मैं अपने सुख सुविधा से ज्यादा दूसरे के सुख सुविधा का ध्यान रखूंगा तो मेरा जीवन बेहतर होगा। मैंने अपने सुख सुविधा के साधन जुटाकर के कई बार अपने जीवन को बेहतर बनाने का सोचा है, लेकिन मेरा जीवन बेहतर ना बनकर के और बदतर हुआ है। जिन जिन ने अपने जीवन में सिर्फ सुख सुविधाएं जुटा करके रखी हैं उनसे पूछें कि उनका जीवन बेहतर हुआ, तब इससे बेहतर है कि मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबके जीवन को अच्छा बनाने की कोई कोशिश अपने जीवन में करूं, वो मेरा मोटिव हो, वो मेरे जीवन का लक्ष्य हो। वैसे तो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना है, लेकिन जब तक मेरा जीवन उस ऊंचाई को नहीं छूता है, तब तक मेरा प्रयत्न है कि रोज रोज मैं अपने कदम उसी तरफ बढ़ाऊंगा। कैसा प्रश्न अपने आप से अपन कभी पूछते हैं? कभी पूछिएगा जब कोई फुर्सत मिले। वैसे तो बहुत मुश्किल है कि इस जीवन में अपन को फुर्सत मिलेगी। अपन तो बैठे हैं आज एक घंटे, थोड़ी सी फुर्सत निकाल करके एक साथ बैठ के विचार कर रहे हैं, कर लेते हैं। पर कभी अकेले में भी आपका मन हो तो इन प्रश्नों को अपने आप से पूछिएगा, किसी और से नहीं। दूसरे से तो पूछते हैं कि क्या सोचा तुमने, क्या करोगे इस जीवन में, क्या करोगे, कुछ सोचा तो होगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इतना इतना पढ़ूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि इतनी इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर बाद में लाइफ सेटल करूंगा, फिर बाद में, फिर बस वही सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, और क्या, इतना ही तो, और क्या मोटिव है मेरे अपने लाइफ का? एक बढ़िया सी हाई एजुकेशन और एक बहुत अच्छा हेल्दी फैमिली, और फिर ओके, फिर खत्म सब। मृत्यु का समय आ जाएगा तो एक अच्छे डॉक्टर के यहां पर ट्रीटमेंट लूंगा, बचने की पूरी कोशिश करूंगा, फिर भी मर जाऊंगा। हां, इसमें क्या, बस मेरा तो मोटिव यही है मेरे लाइफ का। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कई कई बार कर चुके हैं अपन, कुछ तो तय करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए कि ऐसा नहीं। अगर यही सब कुछ करना है तो एक सामान्य कीड़ा भी अपने जीवन को बिता लेता है, एक सामान्य पशु भी अपने जीवन को अपना खाना जुटा लेता है, ठहरने के लिए स्थान जुटा लेता, रात सोने के लिए कोई जगह उसको मिल जाती है। अगर इतना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है तो ये तो मेरे मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। मैं मनुष्य हूं इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं एक बहुत बड़ा उद्देश्य अपने जीवन का लेकर के जीऊं, और उस उद्देश्य के पूरा करने के लिए मैं निरंतर विचार करता रहूं। तब हो सकता है कि हमें यह समाधान मिले। और जैसे ही आप आश्चर्य करेंगे कि अगर जीवन का एक उद्देश्य हम बना लें तो फिर देखिएगा कि जीवन कैसे कैसे व्यतीत होता है। बिल्कुल जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही जिएंगे, लेकिन अब उद्देश्य बदल जाने से, हमारा नजरिया बदल जाने से, फिर सारी चीजें, वे चीजें जो हम कल तक करते थे, आज हम और बेहतर ढंग से करना शुरू कर देंगे। कहीं पर पढ़ा था मैंने कि जो लोग सफल होते हैं अपने जीवन में, वे कुछ अलग तरह से अलग काम करते हों, ऐसा नहीं है। जो लोग सफल होते हैं वे सारे काम वही करते हैं जो एक आदमी करता है, लेकिन वे अलग ढंग से करते हैं। उनके करने का ढंग भर अलग होता है, क्योंकि उनका सोच अलग होता है। और एक बार अगर अपन सोच लेवे कि अपने जीवन का लक्ष्य तो बहुत जीवन में ऊंचाई छूना है, तब फिर देखिएगा कि जो भी हम काम करेंगे उन सब के पीछे हमारा वो उद्देश्य हमें जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक विचार अपने जीवन का, उद्देश्य भर हमें निर्धारित करना। और नंबर थर्ड, व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, मेरे अपने इस जीवन का कारण क्या है, जैसा जीवन मुझे मिला है इस पर विचार करना जरूरी है। मुझे कैसा बनना है ये तो ठीक है, पर मैं जैसा हूं उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुझे जैसा बनना है तो अगर मेरी इस जीवन की जिम्मेदारी किसी और की है, तब तो फिर मुझे जैसा बनना है तो उसी से अपील करना पड़ेगी, मर्सी अपील, दया की भीख मांगना पड़ेगी कि भाई आपकी बार ऐसा वाला बना देना, अभी तो ऐसा बनाया था आपने। नहीं, तो हमें जरूरी है कि रूट कॉज क्या है हमारे अपने प्रेजेंट लाइफ का। हम जैसा जी रहे हैं, हम अगर दरिद्रता में जी रहे हैं, हम अभावग्रस्त होकर जी रहे हैं, या कि बहुत धन संपन्न होकर के जी रहे हैं, बहुत इज्जत के साथ जी रहे हैं, तो उन सब के पीछे कारण क्या है? हम लोग इस मामले में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में जितनी भी गड़बड़ियां हैं उन सब का कारण कोई और है, और जितनी भी बढ़िया चीजें हैं उन सब का श्रेय स्वयं मेरे को जाता है। जबकि मजा यह है कि जितनी गड़बड़ियां हैं और जितनी अच्छाइयां मेरे जीवन में हैं, उन सब की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। जब मैं अभावग्रस्त होता हूं तो जिनके पास चीजों का सद्भाव है उनकी तरफ उंगली उठा के कहता हूं कि सब बेईमान, इन्होंने बेईमानी करी इसलिए इतना हासिल हुआ। और आज तो ऐसे ही लोगों की पूछे, भैया खूब देख लिया है, धन पैसे वालों को ही सब पूछते हैं, हम तो गरीब हैं, हमें कौन पूछता है। तो आप गरीब क्यों हैं, कभी सोचा? नहीं, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग अब ज्यादा दिन नहीं चलने चाहिए। ये भावनात्मक जो है ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है कि आप दूसरे की भावनाओं को इस तरह से ब्लैकमेल करें। अपनी गरीबी का रोना नहीं रो सकते आप अपनी अभावग्रस्तता का रोना नहीं रो सकते, आप अपने अल्प ज्ञान का रोना नहीं रो सकते, आप अपने जीवन में आए हुए दुखों का किसी और से रोना नहीं रो सकते आप, क्योंकि अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं दीनहीन और दरिद्र हूं और अगर मैं अज्ञानी हूं और अगर मेरे पास अपने जीवन को अच्छा बनाने की जरा भी समझ नहीं है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, किसी और की नहीं। न सरकमस्टेंसेस जिम्मेदार है, न कि गवर्नमेंट की व्यवस्था जिम्मेदार है, न कि कोई समाज की व्यवस्था जिम्मेदार है, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। ये बहुत कठिन है ऐसा स्वीकार कर लेना। नहीं, हम तो कारण ढूंढते हैं अपने दुखों का बाहर, और अपने सुखों का कारण वो भी बाहर, सब बाहर ढूंढते हैं, जबकि मेरे सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी अपनी है, किसी ईश्वर की भी नहीं है। ईश्वर इसके लिए नहीं है कि वो हमारे सुख दुख का निर्धारण करे। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जिसने जैसा किया है उसको वैसा यहां पर फल मिलता है। ये हमारा भ्रम है कि कोई और हमें फल देता है। इस बात की जिम्मेदारी अगर हम समझना शुरू करेंगे तो अगर मेरे जीवन में मैं कुछ कमियां हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर ठीक है मैं उन कमियों को निकाल दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन मेरी कमियों की जिम्मेदारी दूसरे की अगर है तो मैं दूसरे को सुधारना शुरू करता हूं, अपने आप को नहीं सुधारता हूं। जैसे कि दर्पण में मैं देखता हूं कि कालिख लगी हुई दिखाई पड़ रही है तो मैं दर्पण को पहुंचता हूं कि वो कालिख तो दर्पण की वजह से दिख रही है, मेरे चेहरे पर पहुंचना चाहिए थी जबकि मुझे। ठीक ऐसा ही है, जब इस प्रश्न का हम उत्तर ढूंढने जाएंगे, समाधान ढूंढने जाएंगे, तब लगेगा कि नहीं, हम तो आज तक बड़े धोखे में थे, अपने जीवन के लिए किसी और को जिम्मेदार मान रहे थे, किसी सिस्टम को। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने लिखा कि शोषण मनुष्य के दुखों का कारण। अब बताइए, किसी केमिकल इंजीनियर से पूछेंगे वो कहेगा कि कोई फिजिकल भीतर केमिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, इसकी वजह से हमारे जीवन में दुख है। हमें एक अच्छा परिवार नहीं मिला इसलिए हमें दुख है। हम सैकड़ों कारण बाहर ढूंढते हैं अपने दुख के और अपने सुख के, लेकिन अल्टीमेट कॉज क्या है? मेरे अपने थॉट्स और मेरी अपनी फीलिंग्स, मेरा अपना सोच का ढंग, उसकी वजह से बना है मेरा पूरा का पूरा जीवन। मेरी अपनी चॉइस, मेरी अपनी मजबूरी और मेरी अपनी कमजोरी, या मेरी अपनी नियति, किस क्या मानेंगे हम? अपने जीवन के वर्तमान के जीवन को हम मान लेते हैं कि मेरी नियति या कि मेरी मजबूरी। अरे वाह, ये कहो कि अगर मैं दीनहीन और गरीब हूं तो वो भी मेरी चॉइस है, क्योंकि मैंने उतना ही किया था एफर्ट जिससे कि ये सब मुझे मिला है। मैंने उसी डायरेक्शन में अपने पहले के जीवन में जो कुछ भी किया है उससे मुझे ये सब हासिल हुआ है, वो मेरी चॉइस है। लेकिन चॉइस कहना बहुत कठिन है। कौन कहेगा कि मैं गरीब हूं ये मेरी चॉइस है, मैं अमीर हूं ये मेरी चॉइस है? कोई नहीं कहेगा। मेरे पास कम ज्ञान है ये मेरी चॉइस है, ये बहुत कठिन है। मेरे पास कम ज्ञान है क्योंकि मेरे माता पिता ही पहले ही से बुद्धू रहे, उनने पढ़ाई लिखाई नहीं, गुरुजी ने भी नहीं पढ़ाया ढंग से, हमको तो सिरेट बढ़ते ही नहीं मिला ढंग से, स्कूल ही ढंग से नहीं मिली। वाह भैया, ये कभी स्वीकार नहीं कर पाए हम कि उसकी जिम्मेदारी हमारी। आज यही सबसे बड़ा देखने में आता है सारे संसार में, गौर से अगर देखें तो हमारे जीवन का ना कोई उद्देश्य है, ना हमने अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाया है बहुत श्रेष्ठ, और ना ही हम अपने जीवन में वर्तमान में जो कुछ हमने हासिल किया है। एक बहुत गरीब आदमी था, रोड पर जो है जो निकलता था उससे कहता था कि बहुत गरीब हूं, बहुत गरीब हूं। एक बाबा जी निकले, बाबा जी ऐसे ही थे, थोड़े विनोदी स्वभाव के। उनने कहा कि तुम तो बहुत अमीर हो भाई। उन्होंने कहा बाबा जी आप जैसे इतने महान और हमें ऐसी इंसल्ट कर रहे हैं, आप ही तो कम से कम व्यंग मत करो कि मैं अमीर हूं, क्या है मेरे पास, दिख रहा आपको? अरे बोले तुम्हारे पास तो ढेर संपत्ति दिख रही मुझे। तो बोले आपकी भी आंख और मेरे पास संपत्ति संपत्ति। उसने कहा ये चिथड़े हैं कुछ जो मैं पहने हूं, इसके अलावा क्या है? बोलती नहीं तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुम बेचना चाहो अपनी संपत्ति तो बिकवा सकता हूं, करोड़ों रुपए की बिकेगी, करोड़ों की। उसने कहा कि क्या कर रहे हो, धीरे से बोलो इतने लोगों के बीच में, मैं तो एक एक पैसा मांग करके जीवन चला रहा हूं, आप कह रहे करोड़ों की संपत्ति। तो उन्होंने कहा कि सुनो अगर सौदा करवाना हो अपनी संपत्ति का तो मैं करवा देता हूं तुम्हारा, चलो मेरे साथ। वो तो तैयार नहीं था लेकिन चले साथ। राजा के यहां लेकर गया वो फकीर, वो साधु उस गरीब आदमी को, भिखारी जो भीख मांग रहा था, और राजा से धीरे से कहा कि जैसा जैसा मैं बोलते जाऊं आप हां करते जाना। मैंने कहा ठीक। और जैसे ही जो है राजा का सामना हुआ भिखारी से, भिखारी तो मांगने की कोशिश में था कि राजा साहब के यहां आ गए कुछ मांग लेंगे, हम और आप भी यही कर रहे हैं, जहां जिसकी जुगत बैठती है वहीं हाथ फैलाता है, जहां बैठती वहीं पर। लेकिन जो प्राप्त है वो कितनी मेहनत से प्राप्त किया होगा ये इस पर विचार हमने कभी नहीं किया, और जो प्राप्त नहीं है उसके लिए मेरी कहां कमी रह गई है इसका विचार मुझे कभी नहीं होता। बाबा ने कहा कि राजा कह रहे हैं कि अगर ये भिखारी अपनी एक आंख दे दे तो 10 लाख रुपए दे सकता हूं, और अगर दोनों दे दे तो 25, और अगर एक हाथ दे दे तो 50 लाख, दोनों दे दे तो 1 लाख। कीमत बढ़ती चली जा रही है। वो कह रहा करते क्या हो? अरे बाबा ने कहा कि तुम कह रहे थे कि मैं गरीब हूं, रित्ती इत्ती तो बिक रही है, ले लो एक आंख दे दो चलो 10 लाख की, दोनों दोगे तो 25 मिलेंगे। अब समझ में आया भिखारी के कि जो मैंने पाया है वो कितना कीमती है, वो मनुष्य जीवन जो मैंने पाया जिसमें कि दोनों आंखें दुरुस्त हैं, दोनों हाथ दुरुस्त हैं, पैर हैं, और मेरे पास बुद्धि है, अपने जीवन को अच्छा बनाने का सोच है मेरे पास, वो ज्यादा कीमती है या कि मुझे यहां संसार में जो प्राप्त नहीं हुआ है उसका रोना रोते रहूं और अपने को गरीब और दीनहीन मानता रहूं? नहीं भैया, मेरे पास सब कुछ है अगर ये हमारे एक बार ध्यान में आ जाए, और उसके लिए मैंने अपने पूर्व जीवन में क्या एफर्ट किया होगा ये पाने के लिए, ये अगर प्रेजेंट लाइफ का कॉज मालूम हो जाए, हम इस पर विचार कर लेवे, तब फिर हम इसकी कीमत समझना शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिट एंड डीमेरिट, नॉलेज ऑफ मैरिट एंड डिमेरिट, ऐसा कह लीजिए। मेरे जीवन में पुण्य और पाप का ज्ञान करने का महत्व क्या है, भले और बुरे का मुझे बहुत ज्ञान है, उसका महत्व क्या है मेरे जीवन? मैं जानता हूं कि यह भला है, मैं जानता हूं कि यह बुरा है, जो पूछता है उसको बड़ी आसानी से बता देता हूं, लेकिन मेरे अपने जीवन में, मेरे अपने जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व होता भले का तो मेरे जीवन में भला होना चाहिए था, भलाइयां मेरे जीवन में होनी चाहिए था अगर मैं भलाइयों का महत्व समझता हूं, लेकिन मैं तो अपने जीवन को बड़े बुरी तरह से जी रहा हूं और कहता हूं कि मुझे मालूम है कि ये भला है और इसमें मेरा बुरा है। जिस चीज में मेरा बुरा है मैं उस चीज को आज तक नहीं छोड़ पाया, और जिस चीज में मेरा भला है उस चीज को मैं आज तक ग्रहण नहीं कर पाया, तो मुझे भले और बुरे का ज्ञान होने का महत्व क्या हुआ? ऐसे तो बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारी है, लेकिन जानकारी जो मेरे जीवन को कोई लाभ ना दे वो किस महत्व की है? इस पर विचार करना पड़ेगा। बहुत सारी जानकारियां हैं हमारे पास, हम भले और बुरे का बहुत ज्ञान रखते हैं कि इसमें भला है और इसमें बुरा है, लेकिन अगर जिस चीज में भला है उसको अपना नहीं पाते हैं, और जिस चीज में मेरा बुरा होता है उसको छोड़ नहीं पाते हैं, तो मानिए अभी अपन ने कोई ज्यादा उस चीज को जान करके अपने जीवन में उसको महत्व नहीं दिया है। क्या हम कभी इस जानकारी को महत्व देंगे? उन लोगों का छोड़ो वो जो रास्ते में बेचारे अज्ञानता पूर्वक अपना जीवन एक एक दाना इधर से उधर खाते हुए फिरते हैं, सुबह से शाम तक अगर पशुओं में देखें तो एक ही चीज देखने में आती, खाने पीने की दौड़। सुबह से शाम तक इधर मुंह मारा, उधर मुंह मारा, उधर खाया, उधर से पाया, जैसे तैसे करके। उन्हें नहीं मालूम कि किस में भला है और किस में बुरा है, लेकिन हमें तो मालूम है कि किस में भला और किस में बुरा है। लेकिन हम भी तो सुबह से शाम तक उतना ही दो रोटी के लिए यहां से वहां भागते हैं। बोलो सुबह से शाम तक नहीं, मतलब मैं कोई उलाहना नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपन बैठ के विचार कर रहे हैं कि अपन कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। कभी अपन इस तरह से विचार नहीं करते, और अगर विचार करना शुरू कर दें तो इतना लाभ होगा अपने को, कम से कम अपन बुरे से तो बचने लगेंगे, कम से कम बुरे को महत्व तो नहीं देंगे, कम से कम भलाइयों की तरफ हमारा ध्यान तो जाएगा कि मेरे जीवन में मैंने दिन भर में क्या ऐसा भला किया जो मैं जानता था कि यह करना अच्छा है। जानता तो मैं हूं कि यह करना अच्छा है, लेकिन करता क्यों नहीं हूं? मैं जानता हूं तो यह बुरा है, लेकिन मैं छोड़ता क्यों नहीं हूं? ऐसा अपने आप से पूछना पड़ेगा। यह दूसरे के बारे में नहीं है एनालिसिस, ये खुद का एनालिसिस है। बहुत कठिन है। मैं जब भी बात कर रहा हूं आपसे, मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं, मैं भी जानता हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन हम सब अपने पुराने संस्कारों से इतने मजबूर हैं कि जानते समझते हुए भी और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत अल्प प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपने जीवन को बुराइयों की तरफ ले जाने के लिए निरंतर असावधान होकर के और उसी दिशा में बढ़ने देते हैं। हम थोड़ा सा ध्यान इस चीज का दें। एक है तो बहुत ऐसे ही घटना कि एक व्यक्ति के घर में, मतलब अपन एनालाइज कर रहे हैं अपने जीवन का, थोड़ी हंसी तो आ जाएगी, पर उस समय मुझे लगता है कि इस कहानी के सुनने के बाद शायद रोना आना चाहिए, लेकिन होता यह है कि ये कहानियां हमें थोड़ी देर को और ऐसा लगता है कि अच्छी लग रही हैं, पर अगर हम इनको विचार करें तो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश देती हैं। एक सेठ था, बहुत ज्ञानवान था। उसके घर में चोर घुसे रात में, नींद में था वो, तो जीवन साथी जग रही थी। उन्होंने कहा कि लगता है कि आवाज आ रही है चोरों के घुसने की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आई नो वेल, मैं जानता हूं रात में कौन आएगा, चोर ही तो आएंगे। नहीं, देखना आप ज्ञान देखिएगा, जानकारी देखिएगा, वो कितने मजे से जवाब दे रहा है। देखो, नींद खराब मत करो, रात में आएगा कौन, मुझे मालूम है चोर है। ठीक, थोड़ी देर के बाद चोरों के तिजोरी बिजोरी तोड़ने की आवाज आई, तो फिर जीवन साथी ने कहा कि सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तो मालूम उसने सेठ ने क्या कहा कि जब इतनी मेहनत से घुसते हैं तो ऐसा तो करेंगे, आई नो वेल, मैं जानता हूं ऐसे ही करेंगे, और क्या, जब इतने मेहनत से भीतर घुसे हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ तोड़ फोड़ और ये सब करेंगे, तिजोरी तोड़ेंगे। अब जब उन्होंने पोटली ओटली बांध ली और उनके जाने की सामान लेकर के और जाने की आवाज आई, तो फिर जीवन साथी ने जगा के कहा, तो उन्होंने कहा, देखो तंग मत करो, इतनी बढ़िया नींद आ रही है, अब जब आए हैं और तोड़फोड़ भी करी है, सामान बांधा होगा तो ले जाएंगे, अब छोड़ के थोड़ी जाएंगे, बिल्कुल लॉजिकल बात है, इसमें क्या है। कितना परफेक्ट नॉलेज है ना, ऐसे ही अपन का भी नॉलेज है, सब बातें जानते हैं अपन बढ़िया से, लेकिन मजा कब आता है, जब सवेरे नींद खुलती है वो सारा सामान लूट गया है, तो अब बाहर चौराहे पर छाती पीट पीट के चिल्ला रहे हैं कि लूट गया मैं। अब रात में तो इतने बढ़िया ज्ञान की बातें कर रहे थे कि रात में कौन घुसेगा, तो चोरी घुसेंगे, और जब घुसे हैं तो सामान चुराएंगे, और जब चुरा बांध लिया है तो ले ही जाएंगे, तब तो ऐसा कह रहे थे। क्या अपने जीवन में नहीं है ऐसा, ऐसे ही अपने जीवन में है। जब जब भी कोई अपन से इस संसार के बारे में पूछता है तो इतने बढ़िया एनालिसिस करते हैं कि क्या मिला यहाँ पर, क्या मिलता भैया, सब दुख ही दुख है यहाँ पर। लेकिन सवेरे से फिर वही ज्यों का त्यों, वही दुकान, वही पैसा, वही सब सब भूल जाते हैं। यहीं से अभी देखना आप, यहीं से अपन बाहर जाएंगे तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। लिखा हुआ है कि तीन तरह के श्रोता होते हैं, जिसमें से आज जघन्य प्रकार के श्रोता हैं अपन सब। उत्तम श्रोता वो है कि जो अपने हंस के समान नीर छीर विवेक करके अपने काम की चीज उसमें से निकाल लेता है, बाकी छोड़ देता है। मध्यम श्रोता है जो गाय के समान होता है, जो श्रोता के द्वारा कही गई बात को अपने भीतर डाइजेस्ट करके और दूध में कन्वर्ट कर देता है, भले ही रूखी सूखी घास की तरह वो चीज कही गई हो लेकिन वो अमृत के समान दूध में कन्वर्ट कर देता। दूसरे तरह के श्रोता भी अपन नहीं है। तीसरे तरह के श्रोता हैं मिट्टी के समान, जिस पर थोड़ा पानी पड़ता है तो थोड़ी सुगंध आती है और फिर बाहर की हवा लगती तो फिर से सूख जाती है। ठीक ऐसे ही अपने साथ में है कि थोड़ा सा भीगापन अपने जीवन में आता है जब अपन अच्छी बात सुनते हैं, और फिर जहां संसार की हवा लगती तो फिर सूख जाते हैं ज्यों के त्यों। लेकिन इस चीज को थोड़ा तो बदलना पड़ेगा। अपने जीवन के बारे में अब बहुत गौर से अपने को विचार करना पड़ेगा। दूसरे के विचार हम सुने, लेकिन दूसरे के विचार तभी लाभकारी हो सकते हैं जबकि हम स्वयं अपने जीवन के बारे में उन विचारों से प्रेरणा लेकर के और विचार करना शुरू करें। तो हमें अगर ये मालूम है कि मेरा भला किस में है और मेरा बुरा किस में है, तो फिर मेरा फर्ज है कि मैं अपने भले के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, जिन चीज़ों में मेरा बुरा होता है उन चीज़ों से दूर रहने के लिए कम से कम विचार तो करूँ। पुरुषार्थ जितना हो पाएगा होगा, मैं विचार तो रखूँ कम से कम कि मुझे इन चीज़ों से बचते रहना है, ये चीज़ें मेरे जीवन को अहितकारी है, तब मेरा ज्ञान वास्तविक कहलाएगा। और नंबर 5, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन का क्या ढंग तय किया है, जबकि मेरा लक्ष्य मुझे मालूम पड़ गया है, तब फिर मेरे लक्ष्य की